नमस्कार कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और जानेंगे कि हमारे क्षेत्रीय संवाददाता आज क्या कुछ खास हमें बताएंगे। और इसके अलावा डेडलाइन में आज बहुत ही खास दिन है, आज हम बात करेंगे सुरक्षित मातृत्व दिवस की। सुरक्षित मातृत्व की जब भी बात आती है तो माँ की याद आती है और माँ जो होती है वो गुरु से ईश्वर से सबसे ऊपर होती है। और तभी तो कहा जाता है कि लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। और माँ कभी किसी से खफा नहीं होती है और माँ के लिए जो समाज की जिम्मेदारियां हैं वो आज के दिन पर उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। तो बहुत कुछ जो भी प्रयास है उन्हें हम बताएंगे अपने डेडलाइन कार्यक्रम में। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नरेश मागू। नरेश, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जागृति, एंड यू स्पीकिंग अबाउट मदरहुड एंड हाउ नो वन कैन टेक द प्लेस ऑफ अ मदर। सो अ मदर अंडरस्टैंड्स व्हाट अ चाइल्ड डज नॉट से, दिस इज व्हाट दे से इन ज्यूइश प्रोवर्ब। ऑल्सो समवन सेड दैट अ मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक। इस मौके पर आपको एक और भी आज त्योहार है, ईद उल फितर की बहुत मुबारक हो आपको।
ईद उल फितर पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसके अलावा एक और आज त्योहार है जो खासकर नॉर्थ जो इंडिया है, खासकर राजस्थान और इसके आसपास के जो इलाके हैं, गण गौर का उत्सव जो महिलाएं मनाती हैं।
इट इज अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, इफ यू हैव सीन इट योरसेल्फ।
जी जी,
इट इज अमेजिंग, यस, वेरी कलरफुल।
जी, तो आज के परिक्रमा में काफी सारे रंग हैं, ईद के, गणगौर के और मातृत्व का खास रंग है।
जी, सो वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, लाइक यू सेड, वी हैव रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड सो मच मोर, बट लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत और चीन के बीच स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण।
Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi says NDA government at the center has made the country much stronger during the past 10 years.
Lok Sabha chunav ke teesre charan ki adhisuchna kal jari hogi.
One terrorist killed in an encounter with security forces in Pulwama district of Jammu and Kashmir.
Eid ul Fitr desh bhar mein harshullas ke sath manayi ja rahi hai.
And in IPL cricket, Mumbai Indians to take on Royal Challengers Bangalore in Mumbai this evening. And like we said a little while ago, it's time now for our segment Dateline India, in which today we are going to talk about the National Safe Motherhood Day. National Safe Motherhood Day is being observed today with the objective to create awareness on proper health care and maternity facilities to pregnant and lactating women. The day is dedicated to Kasturba Gandhi, who was always committed to the welfare of children and women. Every year, the aim is to raise awareness about maternal health, emphasize its significance, and decrease maternal and overall mortality rates. A pregnant woman should live and experience a positive environment to feel happy and to take care of herself.
जी हाँ, जब माँ स्वस्थ होती है तो पूरा घर वो अच्छे से रखती है और अपने बच्चे का वो अच्छे से ख्याल रख सकती है। और इसी के मद्देनजर हर साल मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। हर साल इसके लिए एक थीम का चुनाव किया जाता है, इस बार है मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता। ये थीम सभी माताओं को उनकी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक जो भी स्थितियां हैं उसकी परवाह किए बगैर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो, इसके लिए इसका चयन किया गया है। और आपको बता दें कि 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर भारत सरकार ने आज के दिन यानी 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। 2005 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर जगह पर, जैसे गांव है, कस्बे हैं, यहां पर जाकर जो माताएं हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में, उनके न्यूट्रिशंस के बारे में जागरूक किया जाता है और जो भी उनके राइट्स हैं उनके बारे में भी उन्हें बताया जाता है।
Jessica Lange once said, "The natural state of motherhood is unselfishness. When you become a mother, you're no longer the center of your own universe. You relinquish that position to your children." National Safe Motherhood Day is not only a day of celebration, but also a call to action. It reminds us of the critical need to ensure that every mother has access to proper health care, adequate nutrition and support throughout her pregnancy and childbirth journey. By working together and advocating for better maternal health services, we can make significant strides in reducing maternal mortality rates and ensuring a safer and healthier future for mothers and their children.
बिल्कुल, और ये जो समय है जब महिलाएं घर से बाहर काम के लिए निकलती हैं, वर्किंग वुमन का जमाना है, और चूंकि मैं खुद भी एक वर्किंग वुमन हूं और वर्किंग मदर हूं, मैं इस बात को समझ सकती हूं कि एक जो वर्किंग मदर होती है उसके लिए कितने सारे चैलेंजेस होते हैं जब वो अपने एक छोटे बच्चे को घर पर छोड़कर बाहर निकलती है, उसके लिए क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, उन सबका निर्वहन करते हुए वो अपने काम पर जाती है। ऐसे में उसे अपनी जो हेल्थ है और अपनी जो मेंटल हेल्थ है खासकर, उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में जो एक्सरसाइज है या फिर न्यूट्रिशन है उनका विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां पर जो मां है वो खासकर ये देखती हैं कि बच्चे के लिए प्रॉपर सारी जिम्मेदारियां जो उसकी है वो पूरी हो जाएं, और जो घर है उसके प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी हो जाएं, और अपने को सबसे बाद में रखती है, और यही कारण होता है कि उसकी हेल्थ हमेशा डाउन हो जाती है।
True, very true. Let's now take our listeners to Dr. Jaya Chawla, who is the Professor, Department of Obstetrics and Gynecology at Ram Manohar Lohia Hospital in Delhi. Dr. Jaya, what is safe motherhood according to you?
Safe motherhood, according to me, would be starting from prior to a woman conceives. So for me, a safe motherhood begins in the mind of the couple when they decide to plan a pregnancy. Thereafter, it relegates to a hospital visit where they seek opinions and allay their anxieties regarding the process. Thereafter, it goes on to span those 9 months which are filled with lot of excitement and yet lot of caution. And finally, it has to come down to a safe birth in an institutional place, and it boils down to contraception thereafter until they plan their next pregnancy. So that is the journey.
Thank you, Dr. Jaya. Thank you very much.
और अब समय है हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और उनसे जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है। और आज खास है, ईद का त्योहार है, हर जगह पर ईद उल फित्र बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लोग सुबह से ही ईदगाहों में और मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये किस तरह से मनाई जा रही है, आइए जानते हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा से।
मध्य प्रदेश में ईद उल फितर का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में सबसे पहली ईदगाह पर नमाज अदा की गई। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नजवी ने ईदगाह पर सैकड़ों लोगों को नमाज अदा कराई। इस दौरान देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी गई और लोगों ने परस्पर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद ईदगाह में एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए शहर काजी ने सोशल मीडिया में मुस्लिम समुदाय की बिगड़ती छवि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदाय की एकता पर जोर देते हुए गैर मुस्लिम लोगों से मेल मिलाप पर बल दिया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
In Rajasthan, the festival of Gangaur is being celebrated with traditional devotion and enthusiasm. Women dressed in traditional clothes are worshipping Lord Shiva, and Gangaur means Parvati with full rituals. On this occasion, various programs are being organized in the state, including in capital Jaipur. Here is a report.
The royal procession of Gangaur will be taken out today and tomorrow in Wal city area of Jaipur. Thousands of people from India and abroad reach Jaipur to have a glimpse of this ride. In Udaipur also, the 3-day Gangaur festival begins today. This ride will start from the Raj Mahal of Udaipur in a ship-like boat and will reach Gangaur Ghat. In the 3-day festival, a glimpse of traditional art, culture, music and dance of Mewar will be seen. This festival is also being celebrated in other districts of the state. Jitendra Dwivedi, Akashvani News, Jaipur.
और गुजरात में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करते हुए चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता के लिए एक विशेष मतदान केंद्र भी बना रहा है। और आज हम एक ऐसे विशेष मतदान केंद्र की बात करेंगे जो गिर के जंगलों में बनाया गया है, मंदिर में केवल एक मतदाता के लिए। आइए सुनते हैं इस विशेष मतदान केंद्र के बारे में ये रिपोर्ट।
जूनागढ़ से 110 किलोमीटर और जामवाला गिर से 25 किलोमीटर दूर गिर के जंगल के अंदरूनी हिस्से में राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक पौराणिक मंदिर है। इसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के महंत हरिदास बाणेज इस मतदार संघ के एकमात्र मतदाता है। चुनाव आयोग ने 2002 से यहां से एक विशेष बूथ की व्यवस्था की है। इस बार भी 7 मई को मतदान के लिए यह बूथ बनाया जाएगा, जिसमें महंत हरिदास अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस खास व्यवस्था के बारे में बात करते हुए गिर सोमनाथ जिला कलेक्टर दिग्विजय सिंह जाडेजा ने इस प्रकार जानकारी दी।
जूनागढ़ संसदीय मत विस्तार के ऊना के कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो बूथ नंबर 3 है, वहाँ के जो महादेव जी का टेम्पल है उसके जो महंत है हरिदास जी, वो वहाँ के वोटर है। क्योंकि उनका कायमी निवास वहीं पे है, तो जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक उनको वहीं पे रहना है और वहीं पे वो अपना मत अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट की ऑफिस है वहाँ हमने ये एक बूथ खड़ा किया हुआ है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि कोई भी मतदार जो है वो अपने मतदान से वंचित ना रह जाए।
गिर सोमनाथ से राजेश पशगोतर के साथ परिक्रमा के लिए मैं अपर्णा खुंड।
In Nagaland, the log drum plays a very integral role in the lives and villages of Khyamnyungan Naga tribes. Since the beginning, the log drum has been a part and parcel of the Khyamnyungan people. In many ways, it signifies unity and strength of the people there. The bigger and longer it is, the stronger and united it shows. From cutting down of the tree till the pulling off of the finished log drum inside the village, it takes the service of every individual from elderly to the youngsters. Here is Ashanyo with a report from our Kohima office.
Once the log drum gets old and unusable, the village elders gather and decide to make a new log drum. The elders make the decision of whose trees they should cut and is called Pyangpao Paipao. They also choose two people whose parents are alive and are not involved in any kind of hunting, thieves, and one who is pure.
To start cutting down the tree, the two chosen people are the first one to cut the tree with a prayer. It is only after the two chosen men starts cutting the tree, others join them in the process. Once the process of cutting and shaping of the log drum is completed, which takes about 1 to 2 months or more, the villagers starts the process of pulling the log. The log drum is bound by wild rope, covering almost entirely for grips. The process of pulling may take some few days to even weeks to reach the village. In the entire process of pulling the log drum, if any unfortunate accident happens with the loss of life, the process of pulling stops and the log drum is left on the spot of the accident, and they start the same process again by cutting a new log.
When the log drum reaches the village, a ceremony is being carried out by sacrificing a cock and dripping its blood on the drum and chanting words which means, under this drum, whether it may be a boy or a girl, let them grow and spread like the branches of a tree, beautiful and courageous. At the same time, the villagers get dressed in their traditional war attires and begin to sing and yell near the drum. The beating are used during solar and lunar eclipse, village informations, war warnings and guard on duty. Upon hearing the beating of the log drum, one can imagine and feel the presence of their forefathers, reminding every individual on how they had lived and the rich culture passed on. For Parikrama with M. Shu, Asonyo, Kohima.
In view of the upcoming Lok Sabha election, we present you a capsule based on state profile, giving details of the number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. First, let's go to Uttar Pradesh, where for the second phase, voting is going to be held for 8 seats. This also includes the important seat of the religious city of Mathura. In this seat, the BJP has given a ticket to Hema Malini, who's been the MP for 2 consecutive terms, whereas SP Congress Alliance has declared Mukesh Dhangar as its candidate and the BSP has fielded Suresh Singh. Apart from these candidates, 12 independents are also in the fray. Here is more from our correspondent.
There are 5 assembly seats in Mathura Lok Sabha constituencies. This includes Chhata, Mant, Govardhan, Mathura and Baldev constituencies. There are total of 19,23,263 voters in the Lok Sabha constituency. BJP's Hema Malini had won this seat in the 2019 Lok Sabha election. Mahesh Pathak of Congress stood third with 28,084 votes. This time RLD is in alliance with BJP and Congress is contesting the election in alliance with SP. BSP has made retired IRS officer Suresh Singh its candidate on this seat. Although before making Suresh Singh its candidate, BSP had declared senior journalist Kamal Kant Upmanyu as its candidate, but later his ticket was cancelled. From SP Congress Alliance, Congress has made Mukesh Dhangar its candidate on this seat. Congress was preparing to compete with Hema Malini's glamour by fielding international boxer Vijendra Singh on this seat, but at the last moment Vijendra gave a shock to Congress by joining BJP. All parties have started campaigning for this high profile seat. Voting on this seat is to be held on April 26. Om Avasthi, Akashwani News, Lucknow.
Time now to take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
In today's episode, we remember the great social reformer, Mahatma Jyotirao Phule, who was born on the 11th of April, 1827. He worked towards the eradication of the caste system and educating women. He and his wife, Savitribai Phule, were pioneers of women education in India.
Jyotiba founded Satya Shodhak Samaj in 1873 in Pune to fight for attaining equal rights for people from so-called lower castes and to educate them. The ideals of human well-being, happiness, unity, equality and easy religious principles and rituals form the philosophy of the Samaj. Jyotiba said,
"Mere aap se vinti hai ki aap mane Ishwar ek hai aur sare manushya uske bacche hain. Mere aap se prarthana hai ki aap apne aur Ishwar ke beech mein kisi ko bichwai na mane."
The members used to visit villages and perform jalsas to spread the messages of social reformation.
Phule is regarded as one of the most important figures in the social reform movement in the country. He was bestowed with the honorific title Mahatma by social activist Vitthal Rao Krishnaji Bandekar in 1888. We salute the great Indian.
We also remember freedom activist Kasturba Gandhi, who was born on the 11th of April, 1869, fondly called as Ba by her husband Mahatma Gandhi. She, in Gandhiji's own words, was the epitome of strength, from whom he learned about the practice of ahimsa, the non-violence. Gandhiji wrote,
"If anything, Kasturba stood above me, but for her unfailing cooperation, I might have been in the abyss. She stood by me in all my political fights and never hesitated to take the plunge. In the current sense of world, she was uneducated, but to my mind, she was a model of true education. She was a devoted Vaishnava, but she had obliterated all feelings of caste from her mind. She personified the ideal of which Narasimha Mehta has sung in Vaishnav Jan Hind."
On the evening of 22nd February 1944, Kasturba breathed her last at the Aga Khan Palace, where she was detained with Gandhiji. We salute the great Indian.
We also remember martyr Faulad Singh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. A resident of Khandesh, Maharashtra, Faulad Singh took part in attacking the British establishments and seizing their treasuries at a number of places.
He took part in a battle on 11th of April 1858, where he was killed by the company troops in the course of fierce fighting. We salute the great son of the soil.
We also remember independence activist Kapil Dev Singh, a resident of Muzaffarpur, Bihar, who took part in the Quit India movement in 1942.
Kapil Dev was arrested and he died on 11th of April 1944 in prisoner's ward of Patna Hospital. We salute the great martyr.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. सबसे पहले बात करेंगे शतरंज की. भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दोमाराजू गुकेश कनाडा के टोरंटो में चल रहे फिडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के ओपन सेक्शन में छठे दौर के बाद शीर्ष पर हैं. गुकेश के साथ इयान निपोपनियाची भी शीर्ष स्थान पर हैं. कल रात विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा के साथ उनका मुकाबला ड्रॉ रहा. अन्य दो भारतीय खिलाड़ियों ने ओपन सेक्शन में छठे दौर में जीत दर्ज की. विदित गुजराती ने अली रेजा फिरोजा को और प्रज्ञानंदा ने निजात अबासोव को हराया. लेकिन महिला वर्ग में भारत की दो महिला खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा. कोनेरू हम्पी को लेई टिंगजी ने हराया जबकि वैशाली रमेश बाबू कैटरीना लेगनो से हार गईं.
बैक होम इन आईपीएल क्रिकेट मुंबई इंडियंस विल टेक ऑन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई दिस इवनिंग. द मैच विल स्टार्ट एट 7:30 PM. अर्लियर गुजरात टाइटन्स डिफीटेड राजस्थान रॉयल्स बाय 3 विकेट्स इन अ लास्ट बॉल थ्रिलर एट द सवाई मानसिंह स्टेडियम इन जयपुर लास्ट नाइट. While chasing a target of 197, Gujarat made 199 for the loss of 7 wickets thanks to a boundary struck by Rashid Khan off the final ball. For Gujarat, captain Shubman Gill scored 72 runs from 44 balls.
और अब याद करते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन. और आज हम याद कर रहे हैं हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु को उनकी पुण्यतिथि पर. स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु में उनके पारिवारिक वातावरण से आई. रेणु बचपन और किशोरावस्था में ही देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे. उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म बनी तीसरी कसम, जिसे काफी प्रसिद्धि मिली. कथा साहित्य के अलावा उन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विभिन्न विधाओं में लेखनी चलाई. उनके कुछ संस्मरण भी काफी मशहूर हुए. उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी. रेणु जी का मेला आंचल वस्तु और शिल्प दोनों स्तरों पर सबसे अलग है. इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को चित्रित किया गया. अपने प्रथम उपन्यास मेला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया.
Today we are also remembering Kundan Lal Sehgal, often abbreviated as KL Sehgal, who was born on this day in 1904, a great Indian singer and actor who worked in Hindi cinema, which was centered in Kolkata during his time but is currently based in Mumbai. Sehgal's unique voice quality, which was a mixture of baritone and soft tenor, was the benchmark for most of the singers who followed him. In fact, it remains the gold standard even today, shining through very early and practically primitive recording technology. Jagriti, how about this beautiful song, Jab Dil Hi Toot Gaya, sung by KL Sehgal from Shahjahan. Shall we bring it to our listeners?
Ji, bilkul.
Jab dil hi toot gaya, hum ji ke kya karenge, ulfat ka diya humne, is dil mein jalaya tha, ulfat ka diya humne, is dil mein jalaya.
कुंदन लाल सहगल हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जा सकते हैं. 1930 और 40 के दशक की संगीतमय फिल्मों की ओर दर्शक उनके भाव प्रवण अभिनय और दिलकश गायकी के कारण खिंचे चले आते थे. वर्ष 1935 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित फिल्म देवदास की कामयाबी के बाद बतौर गायक अभिनेता केएल सहगल शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे थे. और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी साहित्य में भारतीय वाग्मिता और अस्मिता को व्यंजित करने वाले साहित्यकार विष्णु प्रभाकर की। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत और कविता आदि प्रमुख विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशन संबंधी मीडिया के हर क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना आवारा मसीहा सर्वाधिक चर्चित जीवनी है। इसके लिए उन्हें पाब्लो नेरुदा सम्मान, सोवियत लेन नेहरू पुरस्कार जैसे कई विदेशी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ से मूर्ति देवी पुरस्कार मिला और पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया।
Today is also the birth anniversary of Jaimini Roy, an Indian painter who was honored by the Government of India with Padma Bhushan in 1954. He remains one of the most famous pupils of Urbanindranath Tagore, another praised Indian artist and instructor. Roy's a highly simplified, flattened-out style and reminiscent of European modern art was influenced by the bazaar paintings sold at Indian temples as talismans. Today we are also saying happy birthday to Ramanathan Krishnan, a retired tennis player from India who was among the world's leading players in the 1950s and 60s. He was twice a semi-finalist at Wimbledon in 1960 and 61, reaching as high as world number 3 in Potter's amateur rankings. He led India to the challenge round of the 1966 Davis Cup against Australia and was the non-playing captain when Vijay Amrit Raj and Anand Amrit Raj led India into the 1974 Davis Cup Finals against South Africa. He was active from 1953 to 75 and won 69 singles.
यदि रामानाथन कृष्णन को स्वतंत्रता के बाद भारतीय टेनिस का आर्किटेक्ट कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी नरेश, क्योंकि उन्होंने टेनिस के खेल के लिए जिस तरह का ग्राउंड तैयार किया और आज जो टेनिस के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया। और उनके योगदान के लिए उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार, 1962 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। रामानाथन कृष्णन ने विम्बल्डन खेल के जूनियर एकल मुकाबले के फाइनल में एशली कूपर को हराया था। ये ऐसी जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी बने थे।
We are also saying happy birthday to Rohini Hattangadi, an actress known for her work in Marathi language and Hindi films, television and theatre. Rohini has won 2 Filmfare Awards, 1 National Film Award and is the only Indian actress to win the BAFTA Award for Best Actress in a Supporting Role for her performance as Kasturba Gandhi in the film Gandhi that was released in 1982.
और प्रसिद्ध भारतीय महिला चिकित्सक कमल जयसिंह रणदिवे की आज पुण्यतिथि है। भारतीय जैव चिकित्सीय शोधकर्ता के रूप में कमल रणदिवे ने कैंसर के इलाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। कमल रणदिवे भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की संस्थापक सदस्य थीं। चिकित्सा में उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए उन्हें पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
Sending happy birthday greetings to Vic Fields. She's an Italian dance act fronted by Danish singer, former model, songwriter and record producer Sanny Charlotte Carlson, born on this day in 1970, known by her various stage names including Vic Fields, Nan or simply Sanny. She's best known for her 1993 single Saturday Night, which became an international hit the following year. Let's listen to this beautiful song.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो जागृति शर्मा और नरेश मांगो को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की दीजिए अनुमति।
नमस्कार
नमस्कार।